शेषं वंदे जगद्गुरुं ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर भगवान ईश्वर के प्रति आज पूरा विश्व जिज्ञासा से जानने की कोशिश कर रहा है। हर मंत्र, हर आध्यात्मिक मार्ग, हर संप्रदाय परमात्मा की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। न साकार भक्ति न निराकार भक्ति, साकार भक्ति भी अपनी जगह ठीक है, निराकार भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपका चुनाव, आप किस मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं। 40-50 साल पहले आपस में बड़ा मतमतांतर था, समुदाय के लोग आपस में टकराते थे। ये जो 50 साल पहले टकराव था, ये अज्ञान के कारण था। आज टकराव नहीं है, मिलन की बात है, समझने की बात है, क्योंकि विज्ञान ने भी हमें एक दूसरे को नज़दीक लाकर, एक दूसरे को समझ सकें कोशिश कर रहा है और सफलता मिली है। तो वेद और विज्ञान के आधार पर प्रथम आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आप साकार भक्ति करें, साकार में राम हैं, कृष्ण हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, देवी हैं, नदी है, पहाड़ है, पर्वत है, अग्नि की पूजा है, सब साकार पूजा में। निराकार में केवल गुरु की पूजा है। लेकिन जरा समझने की बात है, ये जो झगड़े थे अब खत्म हो गए हैं। इस समय आपके सामने भजन मंडल के माध्यम से कुछ विचार आप दे रहे थे। इस समय मनीषानंद भी कुछ बोल रहे हैं। अब इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। मैं राम बोलूं अथवा कृष्ण बोलूं, मनीषानंद वही हैं, मुख वही है, जिह्वा वही है। ऐसा नहीं कि राम कहने पर जिह्वा अलग हो गई और कृष्ण कहने पर जिह्वा अलग हो गई, या एक बार मैंने राम कहा तो जिह्वा कहते हैं। नहीं मनीषानंद जी, राम आप बोले हैं तो मैं कृष्ण बोलने के लिए तैयार नहीं। ये जो अस्तित्व है उसमें से विचार को व्यक्त करना हमारे और आपके हाथ में है। अस्तित्व में नहीं बना है। जब हम आप गर्भ में आए तो एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को धर्म के नाम से हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम किस तरह से गर्भ में अपने विकास क्रम को लिए, वो किसी के संकल्प पर, किसी की आज्ञा पर, किसी के विचार पर नहीं है। अगर आप अध्यात्म के आधार पर चलेंगे तो मानेंगे कि परमात्मा की व्यवस्था है। आप अगर वैज्ञानिक हैं तो मानेंगे कि कुदरत की व्यवस्था है, प्रकृति की व्यवस्था है। आप वैज्ञानिक हैं तो प्रकृति मानिए, आध्यात्मिक है तो परमेश्वर मानिए। लेकिन ये होता है, इट हैपेंस सो, हाउ यू एक्सेप्ट इट इज यू टू डिसाइड, ये वैज्ञानिक करते हैं। वैज्ञानिक जैसे कहते जब आप भोजन करोगे तो आपके भोजन में से खून भी पैदा होगा, कफी भी पैदा होगा, मलमूत्र होगा। क्यों होता नहीं, इट हैपेंस, ये होता है। मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, शायद आपके मन में भी हों, स्वामी जी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्रत्यक्ष बातचीत में भी विचार आता है, फोन पर भी आता है, और बड़े भाव से मैं समझाता हूँ। जैसे एक उदाहरण दे दूँ, उदाहरण तो बहुत है लेकिन फॉर एग्जाम्पल जाके आप भी समझें कि ऐसा क्यों हो। विज्ञान कहता है इट हैपेंस, सो ऐसा होता है, क्यों का सवाल नहीं, होता है, जो होता है उसे आप स्वीकार करें, ये होता है, क्यों का सवाल नहीं। एक उदाहरण दूंगा जो अक्सर शायद आपके मन में हो तो बात हृदय से निकल जाए और परमात्मा की तरफ बढ़े, इसलिए एक उदाहरण दूंगा। स्वामी जी इस समय विकट परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, भोजन का ठिकाना नहीं, बच्चों के पढ़ाने के लिए पैसा नहीं, दूध वाला पैसा मांगता है, लोग आते हैं अपना उधार पैसा मांगते, मैं भगवान की पूजा करता हूँ फिर भी ऐसा क्यों। अब यहाँ पर ये समझिएगा, इसको समझिए, भगवान आपके साथ है, भगवान आपको शक्ति दे रहा है कर्म करने के, निर्णय आपको करना पड़ेगा। पूरा रामायण पूरा महाभारत देख लें, राम हनुमान जी के साथ हैं, लेकिन हनुमान जी का एक ही प्रसंग देख लो, सीता की खोज का, कितने राक्षस राक्षसियां सामने आए, सुरसा करके आई, वहां पूछ में पकड़े भी गए, पूछ में आग भी लगाई गई, ये सब क्या। हम आप अगर हनुमान की जगह होते तो जाते भी नहीं खोज करने के लिए और राम को छोड़ देते, कौन बड़े झंझट, राम की बैठी गई है कि मेरी बैठी गई, मरे राम मेरे को गया। हाँ हाँ चलो वैसे वो मेरे को क्या, ये सब नकारात्मक जो विचार है कमजोरी के लक्षण। जब आपने बचपन में सुना होगा कहानी के माध्यम से, अंगूर खाने का प्रयास लोमड़ी करती है और प्रयास में जब सफल नहीं हुई तो क्या कहती है कि अंगूर खाते हैं। आपसे मैं पूछता हूँ, एक भी अंगूर मुख में नहीं गया तो बिना अनुभव के आप कैसे कह रहे हैं कि अंगूर खट्टा है। अर्थात जब आदमी किसी की निंदा करता है तो निष्फल व्यक्ति दूसरों की निंदा करता है। इसलिए आपके सामने भी कभी कोई किसी की निंदा करे तो समझ जाना कि निष्फल व्यक्ति है, इसको सफलता नहीं, जो नहीं मिली है, और जो निष्फल है उसकी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। आप स्वयं अंगूर खाइए फिर देखिए खट्टा है कि एक बात है। इसलिए ये जो हमारे यहाँ श्रद्धा शब्द है उसका क्या अर्थ है, आम तौर से हम लोगों ने श्रद्धा का अर्थ लगाया है, रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, भोग चढ़ाता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ। इसके पीछे एक रहस्य है मन का कि जैसा मैं चाहूँ वैसा परमात्मा करे, लेकिन परमात्मा ने तो साफ साफ कर दिया, ये था माम प्रबंध से शास्त्र चौबजा में, यथा कर्म तथा लाभ इस दर्शनम, सन्मन्ये वाचिकावस्थे मा फलेषु कदाचन यदा राहि धर्मस्य ग्लाने भवद भारत। भगवान ने कई बार कहा सुख में भी मेरी जरूरत है, दुख में भी जरूरत है, मैं तो तुम्हारे कर्म के फल का दाता हूं, कर्म तो तुम स्वयं करते हो। अब देख लीजिए आप, भगवान को ध्यान में रखकर जो हम कर्म करते हैं, भगवान को ध्यान में रख करके जो कर्म करते हैं वो भगवत कर्म है। ये बहुत बारीक अंतर है, समझिएगा। भगवान को ध्यान में रख करके जो आप कर्म करते हैं भगवत कर्म है, और उसमें अहम नहीं है, ईश्वर की कृपा है, दया है कि मैं निमित्त हूं। भगवान का ध्यान करके जो कुछ भी आप कर्म करते हैं भगवत धर्म है, और आप केवल निमित्त हैं, और भगवान को छोड़कर बिना याद किए जो करते हो वो भगवत धर्म नहीं है, वो आपके अपने अहम का धर्म है। भगवान को याद करके जो कर्म करोगे उसमें अहम नहीं है, भगवान को छोड़ करके जो कर्म करोगे उसमें आप अहम है। और हमारे ऋषि मुनियों ने कह दिया, जहाँ मैं हूँ वहाँ वह नहीं, और जहाँ वह है वहाँ मैं नहीं, और जहाँ अहंकार आया तुरंत भगवान वहाँ से हट जाए। भगवान के हटते क्या होगा, आपके अंदर स्वार्थ की बुद्धि आएगी, और स्वार्थ की परिपूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध में मति बुद्धि भ्रष्ट होगी, और पहले अपना सत्यानाश करोगे फिर परिवार का और समाज। लेकिन जब भगवान को ध्यान में रखकर करोगे तो जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। कर्म चाहे हिजड़े कपड़ा पहना दे कि लंका में ले जाए, लंगोटी में रखे कि कहीं है। कृष्ण और सुदामा की जब बात आती थी यही है, कृष्ण और सुदामा जब मिलते हैं किधर पड़ी है, पूरी बातचीत के बाद देखने के बाद आप जानते हैं भगवान दौड़े, गले लगाया, उनकी गरीबी पर रोने भी लगे, पांव भी धोया, सब कुछ आप जानते हैं। लेकिन जो बताना चाहता हूं, रुक्मणी कहती है आपके इतने पवित्र पुनीत सखा सुदामा आज पता लगा कि बहुत ही आपके नजदीक और प्रेम है, आपका स्वभाव वर्तन है। तो जब ये गरीबी में भटक रहे थे, खाने का ठिकाना भी नहीं था, तो आप मित्र होकर इनको याद क्यों नहीं किए? वहां पर कृष्ण ने कहा, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की हुई निर्धन की हुई चोरी। माँ ने चना दिया था देवी, रुक्मणी को देवी बोलते थे, गुरु माता ने सांदीपनी आश्रम में चना दिया था और कहा था कि दिन में दोपहर में भूख लगे तो आधा चना कृष्ण को देना, सुदामा आधा तुम खाना। लेकिन सुदामा ने दिया नहीं, और पेड़ पर ऊपर जाकर के चना जब खाने लगे, हमने कहा आप क्या दांत क्यों बोल रहा हूं, कहते हैं कि मित्र ठंडी के कारण दांत की आवाज आ रही है, बाकी मैं कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। किसने कहा ठीक है। फिर गुरु ने कहा कि गुरु माता की आज्ञा का पालन न करने से तुम्हें दोष लगा है। बात चने की नहीं है, आज्ञा पालन की, इसलिए हे सुदामा तुम विद्वान हो, सब कुछ हो, परंतु तुम बहुत दुखी हो जाओगे। सच में गुरु का आशीर्वाद या श्राप तो भोगना ही पड़ेगा, वो कर्म। कृष्ण रोने लगे कि मेरा गुरु भ्राता है, तो कहते जा जिस दिन अहम को छोड़ करके तू कृष्ण से मांगने जाएगा, मिलने जाएगा, मेरा श्राप दूर हो जाएगा। पहले तो कपट किया और फिर अहम में बोल बैठे, मुझे न किसी की जरूरत है गुरुदेव, न आपकी जरूरत है, मेरे पास सरस्वती है, मैं इसके बल पर अपना जीवन का निर्वाह कर लूँ। फिर आप देखते हैं कि इतने जबरदस्त, सुदामा की पत्नी का नाम है वसुंधरा, बहुत ही पवित्र, बहुत उच्च कोटि की विचारधारा के। सुदामा के चाचा के लड़के हैं, उनका नाम है चक्रधारी, पंडित चक्रधारी, बड़े विद्वान बड़े, वो राज दरबार में पंडित हैं। सुदामा से कहा कि मेरे साथ राजा के पास चलो, वहाँ राजा की प्रशंसा करोगे तो ये जो भीख मांग रहे हो इससे छुटकारा हो जाएगा। राज दरबार में सुदामा गए, लेकिन उनको थोड़ा हम टकराया कि मैं इतना विद्वान हूँ और राजा की झूठी प्रशंसा क्यों करूँ, तो नहीं किया। तो राजा ने बिना कुछ इनाम दिए धक्के से दरबार से निकाल दिया। और चक्रधर पाणी को कहा, जो ब्राह्मण थे, कि कभी इसको लेकर, मूर्ख बोला कि इस मूर्ख को कभी लेकर दरबार में मत आना। इस सारी बात का पता वसुंधरा को चलता है, सुदामा की पत्नी को। सुदामा की पत्नी बहुत नम्रता से कहती है, त्रिलोकी नाथ जो तुम्हारे सखा थे, साथ साथ पढ़ते थे सांदीपनी आश्रम अवंतिका उज्जैन में, जो दाता सबको दे रहा है उसके यहाँ मांगने गए, लेकिन जो सबको दे रहा है तुम्हारा मित्र है उसके यहाँ मांगने क्यों नहीं जाते। अब उनको पुरानी बातें याद आई, तो मैं कुछ भी करूँगा लेकिन मैं इनके यहाँ मांगने, अहम का टकराव आज भी यही होता है, कोई एक बात हो जाए। इसे थोड़ा सा आपको बता दूं, अगर आप हमारे पुराण कथाओं पढ़िए तो जब कथा उषा की अनिरुद्ध की आती है तो वहाँ पर किसने कहा गया कि वानरसुर की लड़की है और अनिरुद्ध इनके प्रति आकर्षित है, वहाँ किसने ये कहा है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, एक व्यक्ति अगर बुरा है उसके आधार पर उसके परिवार या समाज में दूसरों पर आरोप लगाने का कोई धर्म नहीं, इसलिए मुझे मत करो। राम भी से मिलने के लिए जब विभीषण आया तो वहाँ दूत यही कहता है, लंकेश का भाई आया है। राम कहते हैं जो आया है उसका नाम बताओ, लंकेश का भाई कह कैसा, लंकेश मेरा विरोधी है, सीता हरण किया है, इसलिए मेरे विचार को पतित न करो, खराब न करो, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को स्वयं देखता हूँ, किसी को उधार पैसे से नहीं। यही आपसे कहूँगा, चाहे परिवार की बात हो समाज की बात हो, लेकिन केवल एक व्यक्ति का परिवार को छोड़ना, समाज को छोड़ना, जगह को छोड़ने का कोई औचित्य, कोई विवेक नहीं। अच्छे बुरे सब होते हैं, अगर रावण ऐसा तो विभीषण तो भक्त है। इसलिए आप किसी के नाम से इसके घर में ऐसा है ऐसा कुछ नहीं, हर व्यक्ति को अपने ढंग से देखिए, और आपके विवेक के तराजू पर अगर इंसान है तो उसके नाते, इंसानियत के नाते, उसका बाप या उसका भाई कुछ रावण जैसा है तो उसे तोड़ने की कोशिश करने की जरूरत नहीं। ये तुम सबके यहाँ मांगने जाते, खैर पत्नी के समझाने पर गए, सब कुछ हुआ, लेकिन वहाँ मांगा कुछ नहीं। और जब घर आते हैं तो उस समय जो कथा है उसके अनुसार बताता हूँ। भगवान कृष्ण ने देवताओं को बुलाया और उसमें कहा, सुदामा की सब अच्छी बात की है, सब ऐसी है, और देवताओं से कहा मेरी नम्र प्रार्थना है कि जाओ, अभी सुदामा रास्ते में है, इसकी पत्नी वसुंधरा है, उससे कहो उसके मकान को हर तरह से एक द्वारका जैसा महल बना दो। आए सब देवता लोग अपने अपने, कोई पानी बरसाया, कोई मिट्टी पौधा उगाया, कोई ये किया, कोई ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, जो कथा है। तो वसुंधरा से पूछा जाता है, भगवान कृष्ण का आदेश हुआ है, ये तुम्हारा मकान हम महल बनाना चाहते हैं, लेकिन वसुंधरा का संस्कार इतना अच्छा है कि लंबे समय तक जिन लोगों से घर कर मांग करके, टुकड़े मांग करके हम खाए हैं, हम जीवित रहे हैं कैसे भी, अगर आपकी कृपा मेरे पर हुई है देवताओं, तो मेरे पहले जिन लोगों ने मेरी मदद की है, मुझे संकट में जीवन दिया है, पहले उनके महल अच्छे बने, उनकी जमीन अच्छी बने, वहाँ पानी फिर मैं। सब लोग बड़े खुश हो, यहाँ कितने सुनने पाते हैं, मैं बड़ी प्यार से मैं भी कर, कई बार मेरे सामने भी बात कर, मनीषानंद जी आप महामंडेश्वर हो, दुनिया भर की बात। मैंने कहा बताए जब मैं संत बना तो उस समय तो मैं एक मनीषानंद था, जिन गरीबों ने मुझे खिचड़ी खिलाया या कैसे भी किया, आज महामंडलेश्वर बनकर मैं उनको कैसे छोड़ू, ये मैंने सीखा है इतने संत, यही मैं आपसे कहूँगा। भगवान करे आप राष्ट्रपति बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए, गवर्नर बन जाइए, करोड़पति बन जाइए, लेकिन आपके दुख के समय में जिसने मदद किया है अपने सुख में, उसको कभी भूलना नहीं, तो फिर जिंदगी में कभी दुख आने वाला ही। एक बार कहीं हम बैठे थे, ये अंकलेश्वर की बात है, समाज पर 6-7 साल पहले, एक महात्मा थे वहाँ सम्मेलन था, कह मनीषानंद आप 40-45 साल से गुजरात में जो टिके हुए हैं उसके पीछे राज क्या है। मैंने कहा राज यह, जो भी मेरे संपर्क में आया चाहे वह कितना बढ़ा, लेकिन जो पहला संपर्क में आया है, कुछ भी हुआ है, मैंने उसका त्याग नहीं किया, बड़ों को देखकर छोटों को त्याग नहीं किया, सूरज को देख करके दीपक कभी बुझाने की कोशिश नहीं, दीपक अपने जगह, सूरज अपने जगह, नदी का भी पानी पिया, समुद्र का भी पिया, छोटे बड़े सबको साथ रखा। कहा आपने कहाँ सीखा, मैंने कहा राम और कृष्ण सीखा, जिनकी पूजा करूँगा, यही मैं आपसे कहूँगा कि आपके दुख में आपके संकट में जिसने मदद की है, अपने सुख में उसका कभी त्याग बस। और यही जो है, तो मैं क्या कहना चाहता था कि इतनी जब रुक्मिणी देवी पूछती है कि आप इतना प्रेम है, सारे देवताओं को बुलाकर सुदामा पर न्यौछावर कर दिया, इसके पहले क्यों नहीं किए, तो वहां भगवान किए था माम प्रबंधन से। देवी सुदामा के अंदर थोड़ा अहम था कि सबसे मांगूंगा इनसे नहीं मांगूंगा, लेकिन जब अहम का नाश हुआ और मेरे पास आए, तो जब मैं मेरा जन्म, किसने कहते आप सब जगह पे, किस कहते मेरा जन्म जो हैं उनके अहम को नष्ट करने के लिए हुआ है, और जब अहम का अहम नष्ट होता है तो मैं दौड़ कर जाता हूँ मिलता हूँ, उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, मैं बहुत बड़ा वक्ता हूँ, ये मैं ही दीवार बन करके हमें आपको भगवान से दूर। मैं कैसी दीवार है, आप सब बैठे हुए हैं, ये मैं बड़ा विद्वान हूँ, मैं बड़ा दानी हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं, मैं तो वारदारी हूँ, मेरे पास तो गांधी है, मैं तो दोस्त की तरह बहुत सुंदर हूँ, भीम की तरह हूँ, ये सारा मैं एक पर्दा बन जाता है और आप सामने हैं। इस पर्दे को जब आप नहीं तोड़ पाते तो भगवान ऐसी घटना आपके सामने लाते हैं कि पर्दा गिरता है और आपको और भगवान के बीच में जो अहम है वो हटता है, फिर आपको सच्चाई का दर्शन। देवी रुक्मणी का, देवी जगत में मेरा कोई दुश्मन नहीं है, दुश्मन केवल अहम है। अब ये बात देख लीजिए, चाहे रामा अवतार में, चाहे कृष्णा अवतार में, चाहे रावण की बात आई कि दुर्योधन की बात आई कि कर्ण की बात आई, यहाँ तक बुराना गया, द्रौपदी को भी अपने सौंदर्य पर था, भीम को अपने पर था, अर्जुन अपने पे था, लेकिन किस तरह से जंगलों में इन लोगों से भीख मंगवानी पड़ी, तब पता चला कि बिना उनकी कृपा से कुछ नहीं होता है, गांधीव और एक गदा कुछ नहीं कर सकते। या विचार कीजिए, अगर आप अच्छी तरह से अपना साथ बढ़े हैं, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह पढ़ नहीं जानते, भीम की शादी है कि जब बनास हुई तो उसके पुत्र का नाम आप जानते हैं घटोत्कच, घटोत्कच का जो पुत्र है बारबरा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यहां बताऊं किसने सुदर्शन से उसका सिर काटा, एक थोड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन जो बात बता रहा, वो कहता है प्रभु भले सिर कट गया लेकिन आपकी शक्ति से मैं ये युद्ध देखना चाहता हूं, इसके बाद मेरी मुक्ति कीजिए। कहा देखो, फिर भगवान कृष्ण की प्रेरणा से लोग बरबरा से मिलते हैं और वहां सब पूछते हैं, सब कुछ बताता है। तो इजाद सुबह के समय थोड़ा हम आया था, सब कुछ था, तो वहां पर खतोत्कच का पुत्र कहता है मैं तुम्हें फिर से, मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं अपनी दिव्य शक्ति से फिर से जो कुछ हुआ है तुम्हें दिखा रहा हूं, लेकिन अभी जरा ध्यान से देखो, तो आप पढ़िए, इन लोगों के जो अंदर अहम था तो वहां पर उन देखे कि बाण मैं चला रहा हूं, गदा मैं चला रहा हूं, लेकिन आगे सुदर्शन चक्र भगवान का है, लेकिन इतने गुदरूप से काम किया किसी को पता नहीं चला, तब जाके पता चला कि भगवान ने हमारी किस तरह मदद की, मदद की लेकिन बताया भी। सुदामा को भी जब दिया कहां बता के दिया, एक बड़ी समझने की बात है। एक चीज मैं आपके सामने बड़े प्यार से कहूं, आप प्रभु का नाम लेकर के अपना काम करें, कभी हताश और निराश अपनी दुर्बलता के कारण कभी मत होना, लेकिन कभी इस बात का अनुभव करना चाहो तो ईश्वर में जो श्रद्धा है वो खंडित, और कर्म से पलायनवादी बनो, आज जो करना है करूंगा, कल जो होना है हो जाए। मुझे अनुभव है, कईयों का अनुभव है, इसको फिर से दोहरा, कैसा भी समय आ जाए बुरा से बुरा हो मेरा कर्म, लेकिन उसे भी ईश्वर का प्रसाद समझ के स्वीकार करूंगे कि मेरे कर्म के कारण ये ईश्वर ने प्रसाद दिया, अहम ना आए, दुर्बलता नहीं आए, किसी के लिए गलत विचार नहीं आए, तो मैं आपसे कहता हूँ किसी ने किसी को निमित्त बना करके प्रभु स्वयं तो नहीं करेंगे। ये पांच पांडव क्या है? हमारे कृष्ण सब कुछ किया, लेकिन रशियन वैज्ञानिक भी कर, कभी अर्जुन से कराए, कभी जैसा अश्वत्थामा धर्मराज युधिष्ठिर से बुलाए। आप जानते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण साथ में हैं, वो किसी ने किसी को निमित्त बना करके काम कराया, स्वयं प्रकट नहीं हुए, लेकिन बरबरा बता रहा है कि वो गुप्त रूप से तुम्हारी मदद करते रहे, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला। इसलिए इनके बिना जैसे करों का नाश हो गया, अगर ये नहीं होते तो तुम्हारा भी सत्यानाश हो गया, तुम कोई टेकने वाले नहीं। यही मैं आपसे कहता हमारा परमात्मा हमें किस तरह मदद करता है, ये जब ज्ञान होगा, अनुभव होगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए खराब से खराब समय में भी श्रद्धा का विनाश नहीं होना चाहिए। और आपसे बड़े प्यार से कहता हूं कि विकट से विकट परिस्थिति में भी किसी को निमित्त बना करके परमात्मा आपको उसमें से निकाल देंगे, ये बात मन में धारण, कैसी भी विकट पड़े, लेकिन शंका नहीं, मन कमजोर नहीं। चाहे आप गुरु की पूजा करते हैं, चाहे साकार की करते हैं, राम की करते, कृष्ण करते, उसमें कहीं कोई नहीं। आप मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो तो है, सभी स्थल उसी के हैं, ये तो अपने अपनी मान्यता, कहीं कोई खंडन की बात नहीं। भगवान किस तरह हमारी आपकी मदद कर रहा है, कई बात बहुत देर से समझ आता। इसलिए आपके समय जो भगवान की बात का उल्लेख कर रहा हूं, चाहे आप साकार की पूजा करें कि निराकार, लेकिन पूजा का लक्ष्य है निर्मल मन जन सो मोहि बावा, मन की निर्मलता। और निर्मलता के एक ही अर्थ है, समय कैसा भी आ जाए, लेकिन हमारे मन में किसी का सुख देखकर ईर्ष्या नहीं पैदा हो, और किसी के प्रति गिराने की, पतन की ओर ले जाने की भावना न पैदा हो, और किसी के दुख में हंसने का अवसर अपने को नहीं मिले, तो अवसर हमारे पास भी आ सकता है। कोई नदी में डूब रहा तो मैं भी डूब सकता हूं। मान्यताएं आपकी है, विश्वास आपका है, और वेदों में यही लिखा है, जैसे श्वास के कमजोर होने से दमा आने पर पहलवान भी शक्तिहीन हो जाता है, श्वास के कम दमा के कारण श्वास के कमजोर होने से एक वीर पहलवान भी कमजोर हो जाता है, इसलिए विश्वास में कमजोरी आने से आप कमजोर हो जाते हैं। तो जैसे दमा का रोगी जिसकी श्वास कमजोर हो गई, कुछ नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, चल नहीं सकता, बस जी रहा है, इसी तरह से विश्वास में जब विश्वास की कमजोरी आती है तो केवल एक जी रहा है, अपनी लाश अपने कंधे पर लेकर चल रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने, आप में कमी क्या है? आप कबीर का उदाहरण लें, सूरदास का लें, तुलसी का दें, महावीर का लें, मीरा का लें, भगवान, इसमें हर तरह से लोग हैं, कोई बड़े घर का है, कोई छोटे घर का है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई नहीं भी पढ़ा है, कोई किसान, तो आप भी जहाँ हैं वो भगवान बता रहे हैं। अगर किसी को अपने पिता का पता नहीं, जैसे कबीर को नहीं था, तो वो भी महान बन सकता, पिता पिता लेके क्या जोड़ रहे हो, ठीक है, कुदरत ने कोई किया, मेरी माँ ने भूल किया हुआ, लेकिन आप क्यों भूल कर रहे हैं, पिता पिता करके अपने को भीख मांगने की बात कर रहे हैं। जहां से मैं जन्मा वहीं से आप जन्मा, ठीक है, मेरे बाप का पता है, आपको अपने बाप का नहीं पता है, लेकिन शक्ति वही है, बिना बाप कोई नहीं पैदा होता। और यही कभी न दिखा दिया कि आपका जन्म कहीं भी हुआ, बिना बाप के नहीं होता, कर्ण भी यही बता दिया बिना बात के, मेरा जन्म नहीं है लेकिन बता दिया। आप पहले स्वामी जी आप क्या कर, ये आपकी बात कर रहा, किसी ने कुछ बोल दिया आप कमजोर हो गए, तुम्हारे बात का पता नहीं, तो नहीं पता है तो मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं गलत, करने भी यही काम ठीक है कि आप सबको मेरे बात का पता नहीं, लेकिन जन्म के बाद जो मैंने कर्म किया उस कर्म का पारितोषिक क्या, उसका क्या। इसलिए हमें अपने माता पिता पर गौरव होना चाहिए, लेकिन कहना ये चाहता हूं कि यहां पर जितने बैठे पुत्र या पुत्री के रूप में गांधी जी के चार बच्चे हुए, पलायनवादी बने, अब गुजरात वाले भी ठीक से नाम नहीं जानते तो गांधी जी क्या करें। मैं गांधी जी को प्रणाम करता हूं, मैं ये बता रहा हूं कि आपके पिता कौन हैं, उनकी अपनी शक्ति है अपना विचार, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। ठीक है हमारा बाप गांधी है लेकिन हमने कुछ किया नहीं तो गांधी के नाम से कब तक चले। हमारा पिता प्रधानमंत्री है लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं आपके पिता का विरोध नहीं कर रहा हूं, आपकी अज्ञानता का कमजोरी का विरोध कर रहा हूं। पिता है, बिना पिता कोई नहीं जानता, कोई जाने के नहीं जाने कर्ण पिता, लेकिन बताना ये चाहता हूं कि ईश्वर में आस्था रख करके जब आप संघर्ष करते हो तो आत्मविश्वास के बल पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आत्मा पर विश्वास करने के लिए परमात्मा पर विश्वास करना जरूरी है, लेकिन देखिए आत्मा पर विश्वास रख करके परमात्मा में विश्वास करना जरूरी है, लेकिन केवल परमात्मा में विश्वास करके और आत्मा पर अपने पर नहीं विश्वास है चलना बड़ा मुश्किल है। खुद कुरान में है खुद और खुदा, खुदा को याद करके तुम अपने अंदर खुदा को देखो खुदा चल रहा है, तो खुदा को याद करके अपने अंदर रख के चलो, लेकिन खुदा को भूलकर खुद चलोगे तो कुछ होने वाला नहीं। खुद के साथ खुदा को भी याद करो, अब केवल खुदा को याद किए और तुम भ्रमित हो गए तो 35 करोड़ देवता भी आग जाएंगे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भारतीय संस्कृति में कल भी थोड़ा बताया था कि आप लोग पैदल आए बहुत आनंद हुआ और युवक लोग आए, ये सब इसीलिए कि हमें अपनी शक्ति का उजागरण करना है जगाना है और जागने के बाद अपने लिए परिवार के लिए समाज के लिए उसका सदुपयोग करना। 100 साल के जीवन इससे आधा जीवन, इससे ज्यादा जीवन किसी का नहीं। इसलिए पूरे वेद के आधार पर आप जिसे मानते मान, लेकिन दूसरों का खंडन न करें, किसी धर्म का समुदाय अपने पिता का आदर करते हुए सबका आदर हो, अपनी माँ के प्रति पूज्य भाव रखते हुए सबका आदर हो, जो आपकी निष्ठा समर्पण उसके प्रति आप जागृत रहें, निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, लेकिन किसी दूसरे वालों कोई राम में रखता है कोई कृष्ण में कोई शंकर उनका खंडन करके आप अपना खंडन करते, ये आपके मन की कमजोरी है, ये पशुधन है। इसलिए परमेश्वर ईश्वर जो परमात्मा की बात आज पूरे विश्व में चल रही है वो है, वो आपके साथ ही है। हमारे यहां पृथ्वी को शक्ति माना गया मां, जल को भी देव माना गया वरुण देव, अग्नि को भी शक्ति का स्वरूप माना गया, वायु को भी देवता माना गया, आकाश को महान शक्ति माना गया। तो जा देख लीजिए, जब हम आप इस धरती पर आए, इस पिंड में हमारे आपके इस पिंड में पुत्र या पुत्री हैं, आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है, और सब इस शक्ति के प्रकट देवता है। पृथ्वी में से शक्ति प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खातर पानी देना पड़ेगा, अनाज देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये आपका शरीर भी क्षेत्र है, एक पृथ्वी है, एक अंश है। तो जैसे ही जमीन को साफ करते हैं, खातर पानी डालते, फिर होता है। इसलिए श्रवण से, मनन से, सत्संग से, माता पिता गुरु क्या वचन सुनने से ये शरीर शुद्ध होगा। जब शरीर शुद्ध होगा, जब जमीन शुद्ध होगी, तो उसे खेड़ा जाएगा। और इसके बाद जब शरीर शुद्ध होगा, तो हम आपको अंदर जो भी आपके गुरु हैं, तो जैसे खेत में हल चलता है, वैसे आपके अंदर परमात्मा के बीज को हम बोने की कोशिश करें। और इसके बाद वो संस्कार धीरे धीरे, जैसे जमीन में से गेहूं पैदा होता है, और गेहूं के लिए जमीन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, आकाश चाहिए, खुली जगह चाहिए, ऐसे अंदर के संस्कार के लिए खुला वातावरण चाहिए, जो भगवान शंकर का स्वरूप, चाहे वो शमशान में रहें या आकाश कैलाश में रहें, लेकिन खुला खुला वातावरण और ऑक्सीजन। आपको जितनी ऑक्सीजन मिलेगी, उतना विचार आपका ठीक होगा। और जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, वहां विचार में दूषण ज्यादा होगा। शुद्ध वायु के लिए आपके विचार कच्चा होना जरूरी है। विचारों का प्रभाव भी वायुमंडल पर अच्छा है, बुरा असर पड़ता है, दिखाई पड़ता है। आपके अंदर जो अग्नि है वो पोषक बने, अर्थात क्रोध है। ये अग्नि का एक स्वरूप क्रोध है, और अग्नि का दूसरा स्वरूप प्रेम। प्रेम पोषक है और अग्नि दाहक है। आपके पास पेटी है, पेटी से भोजन बनाइए, मैच बाग से चूल्हा जला के भोजन बनाइए तो पोषक, और किसी का घर जलाइए तो दाहक। आप किसी को प्रणाम कीजिए, शक्ति का पोषक है, और किसी गला दबाइए तो दाहक। स्वतंत्र हैं आप, भगवान ने तो हाथ दे दिया, लेकिन इसे पोषक बनाना है कि दाहक बनाना है? आपने मुझे चाकू दिया कि स्वामी जी के पास सफरचंद आए तो काट के खाए, तो सफरचंद न काट करके कोई और सफर भाई को काटना शुरू कर दिया। एक बात, ईश्वर ने जो कुछ दिया, इस समय आप लोग हैं यहाँ पर, सब अच्छे अच्छे लोग बैठे, चलो ये स्कूल की व्यवस्था, बालू भाई उच्च कोठी के शिक्षक रहे, इनके साथ स्टाफ था, इनके साथ बच्चे थे, तो एक शिक्षक की व्यवस्था, उस व्यवस्था में बालक है, तो क्या आप बालक के दुश्मन थे जब जानते थे? उसको ठीक करने शिक्षक की व्यवस्था है कि बालक ठीक बने। इसी तरह से ईश्वर की व्यवस्था में स्वयं वो राम बन के आए, कृष्ण बन के आए, स्वयं वही शंकर हैं, कोई अंतर नहीं, वही गुरु के रूप में आए, और आप जो उसके बालक हैं, उसने हमें एक व्यवस्था दी कि जो मेरे बालक हैं उनके अंदर अच्छा संस्कार देंगे, एक व्यवस्था। आपका लड़का कलेक्टर बनता है सरकारी व्यवस्था में, तो सरकारी व्यवस्था में आपका लड़का कलेक्टर बनता है तो सरकारी व्यवस्था है कि जिले में कोई अपराध नहीं हो, कोई गलत न चले, और चले तो उसको दंड दे। इसलिए कलेक्टर की व्यवस्था शांति रखने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए नहीं। इसलिए वेद क्या कहता है, जो लोग समस्या हल करने में ईश्वर तरफ से आए, अगर वही समस्या बन गए तो फिर समस्या कौन हल करेगा। कलेक्टर जिले की समस्या को हल करने के लिए सरकार की तरफ से रखा गया, और कलेक्टर ही समस्या बन जाए तो समस्या कौन हल करेगा। तो हम आप जितने बैठे हैं पोते आप पुत्री करूँ समस्या हल करने के, समस्या बनाने के लिए नहीं। और चूंकि समस्या हल करना है तो हमें पोषक बनना पड़ेगा, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, हमारी दृष्टि अच्छी होनी चाहिए, हमारी वाणी अच्छी होनी चाहिए, हमारे हाथ अच्छा काम होना चाहिए, हमारा पांव अच्छी जगह जाना चाहिए। जा विचार की बड़े प्यार से कह रहा, वेद का एक मंत्र याद रखा, भक्ति में भगवान ने कहा है और आज के हिसाब से कहा है, मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर अपने भक्तों को मैंने अपनी आंख में काजल की तरह लगाया, लेकिन काजल लगने के बाद पता नहीं कहां से धूल आंख में डाल करके मेरा भी सत्यानाश कर। भगवान कहते हैं मैं तो काजल की तरह तुम्हें अपनी आंख में लगाया, और तुम लोग पता नहीं कहां से धूल लाकर आंख में मेरा भी सत्यानाश किया और अपना भी किया। या विचार के अभी इतना सुंदर भजन हो रहा है, मैं आपको हारमोनियम ला सकता, बालू भाई को भी ला सकता, इतनी सुंदर ढोलक बजा रहे उनको भी ला सकता हूँ, तो इनको तो दिखा दिया हारमोनियम ला दिया, लेकिन सीखना आपको पड़ेगा कि देखते ही बजाना शुरू करूँ, कितना सुंदर। तो मैं इतनी बातें तो कर रहा हूँ, बस स्वामी जी ने सुना दिया और काम बन गया कि उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, कुछ करना तो पड़ेगा। अभी जब ढोलक बज रही थी, हारमोनियम बज रही थी, तो इनको इतना ज्ञान है कौन सा स्वर निकालना, कैसे निकालना, कितना दबाव देना, कितना आवाज देना। आपके हाथ में दें तो पहले ढोलक ही खत्म कर दोगे, तो आगे क्या सिखाओगे। इसलिए कह रहा शुरू में इतना तो सीखो कि जो चीज आपको खराब लग रही है उसका वर्णन किसी के साथ। कोई मुझे गाली देता है तो नहीं अच्छी लगती, तो इतना तो सोचो कि हमें भी किसी को गाली देना नहीं चाहिए। पहले अपने ऊपर बता लो, मैं ऐसी स्थिति में होता तो क्या होता। एक बार कृष्ण और दाऊ में भी ऐसी कोई बात हो गई, तो कृष्ण ने कहा दाऊ एक बार आप ये सोच लीजिए कि आप यहाँ होते तो क्या करते। कहा जी मैं भी यही करता हूँ, बात खत्म करो। हम उपदेश तो दे रहे, चलो यहाँ सब अच्छे बैठे हैं, उपदेश दे रहा हूँ। अब तीन दिन का एक भूखा आदमी है, अब भूखा आदमी को तो क्रोध आएगा, अब लगे हम उसको सुन भाई बैठ जा, तू भगवान की बात सुन, पहला उसका भगवान रोटी है, पहले रोटी खिलाइए तब वो भगवान की बात सुनेगा। इसलिए विवेकानंद ने कहा जब तक हर व्यक्ति भूखा रहेगा, नंगा रहेगा, वहां पर अध्यात्म कोई जागरण होने वाला नहीं। उसका सब भगवान रोटी और कपड़ा है। अब इसलिए पहले एक एक इतने लायक बनो, हम स्वयं रोटी खा सके, अपना कपड़ा लाएं, अपने परिवार के लिए करें, अपने समाज, लेकिन शुरुआत पहले अपने और नंगा रहकर किसी को कपड़े का दान देने की जरूरत नहीं, भूखा रख करके किसी को दान देने की जरूरत नहीं। कल भी आए आप लोग, आए बालू भाई आए, इस साल तो मैं क्यों ऐसा है कि 58 में मौन रह रहा था, गुरु महाराज ने कहा था 50 साल रखना, तो पिछले साल 50 साल पूरा हुआ, तो कई लोगों ने कहा था कि इसका उत्सव करो, ये करो। अब ये बताए भाव में नहीं लिए रखता था कि व्यापार करने के लिए रखता था कि भाई 50 साल मौन रहा तो एक है, तो अभी मौन नहीं रहा, लेकिन कभी लग रुद्र हुआ, कभी ये हुआ, कभी हुआ। तो अभी जब तक आपके बीच में हर साल सावन महीने में आप आते रहें, कभी लग रुद्र होगा, कभी विष्णु याग होगा, कभी नवचंडी होगा, सब होता रहेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि 50 वर्ष तक मौन रहा, लेकिन आप इतने कहूँगा मौन काल से क्या है, भगवान शंकर जहाँ जरूरत है बोलो, नहीं चुप रहो, जहाँ जरूरत है देखो, नहीं तो मत देखो। तो महादेव की तरह इतनी शक्ति आएगी कि आवश्यकता पड़ने पर ब्रह्मांड को हिला दोगे, लेकिन आप रोज हिलते रहते हैं तो इसलिए ब्रह्मांड क्या हिला दोगे। इसलिए छोटी मोटी बातों से देख करके सुन करके अपनों के हिलने की जरूरत, छोटे मोटे हवा तो रुकाते रहते हैं, उसमें कौन गिरता है, जो कमजोर होता है। अगर किसी को देख के हम गिर गए तो हम तो बहुत ही कमजोर हुए ना। मैं तो कहता तूफान भी आ जाए, समुद्र भी आ जाए, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आए समुद्र कमांडमेंट्स में आया, जैसे कहते आए समुद्र तू क्या मेरा रास्ता रोकेगा, मैं रास्ता बनाऊंगा। तो मैं तो जीसस क्राइस्ट को, पैगंबर को, भगवान बुद्ध, महावीर को मानता और एक ही मानता हूँ कि ये भगवान हमारे उतरे हैं, भगवान हमारे उतरे हैं, तो ये स्वाभिमान है, अभिमान नहीं है। जब भगवान हमारे उतरे हैं तो भगवान की बनाई हुई कोई चीज़ अगर मैं ईश्वर को याद करूँगा तो उसकी कोई माया हमारा कुछ भी बिगाड़, जब ईश्वर को भूलेंगे तभी उसकी माया काम जो है करेंगे। तो आप सबको मैं ईश्वर के रूप में ही देखता हूँ, उसकी आप अनुभूति करें। और मौन का अर्थ जो सीखा है, हम जब बोले अच्छा बोले, नहीं चुप रहें, देखें तो अच्छा देखें, नहीं आंख बंद करें, सुने तो अच्छा सुने, नहीं तो समाधि लगा लो। और फिर कहता हूँ कि जरूरत पड़ेगी भगवान शंकर की कृपा से, अगर कोई जटिल समस्या आई तो जटिल से जटिल समस्या में आप देखते हैं कि भगवान शंकर ने हर समस्या में समाधान किया। तो मैं यही चाहता हूँ, नपा तुला आप देखें, बोलें, सुने, हमेशा अच्छा काम करें, मन में बदले की भावना नहीं आए, जहाँ जरूरत है बोलें, नहीं मौन रहें। और अगर विकट से विकट समस्या आ जाए तो उसमें से आप निकलें, और निकलने के बाद ईश्वर का ही आभार माने, अपनी विद्या का, अपने अहम का, अपने बल का कोई आभार मानने की जरूरत, उसकी कृपा से ही सब कुछ है। ऐसा चलेंगे, आज भी सुखी हैं, हमेशा सुखी रहेंगे। आप जागिए, घर को जगाइए, पड़ोस को जगाइए। आप सुखी हैं, घर को सुखी रखिए, पड़ोस को सुखी रहिए। यही ईश्वर की एक लीला है, एक ईश्वर का विषय है, जो सारे शास्त्रों का एक सारांश आपके सामने रख दिया। हरि ओम।
सदगुरु देव की जय।
चाचा जी आ गए। हाँ चाचा जी आ गए। एक मिनट, आज का जो कार्यक्रम है, जो कुछ भी भोजन है, सब चाचा जी की तरफ।